ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राजन अस्ति महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तिसंग परम गुरु।
This age of Kali Yuga is an ocean of faults.
कलि युग जो है वो सारे दोषों की निधि है।
In other words, there are so many distractions.
दूसरे शब्दों में बहुत सारे जो अड़चनें आती हैं।
All processes of yoga and self-realization are very difficult to follow in this age of Kali because of the infinite distractions that always come into our lives.
इस युग में योग और आत्म साक्षात्कार की जो सारी विधियां हैं वो बहुत मुश्किल हैं क्योंकि इतनी सारी अड़चनें जो हैं जो इस युग में आती हैं।
And these distractions are constantly dragging our minds and our attention away from the lotus feet of Shri Krishna.
और इस सब अड़चने जो हैं हमारे मन को भगवान के चरण कमलों से दूर ले जाती हैं।
We are speaking philosophy at this time.
हम इस समय दर्शन शास्त्र के विषय में कह रहे हैं।
Philosophy of the Bhagavatam and of the Gita.
और भागवत और गीता इनका दर्शन।
And we find in trying to speak and trying to hear the philosophy, there are so many distractions.
और जब हम ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं और सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो इतनी सारी अड़चनें आ रही हैं।
Because by the grace of Sri Radharani, I do not know Hindi, so I do not know if this distraction is auspicious or inauspicious.
Radharani की कृपा से मुझे हिंदी नहीं आती, इसलिए मुझे ये पता नहीं है कि ये शुभकारी है या अशुभकारी है।
Sometimes not speaking Hindi deprives me of much amrita or nectar.
कई बार हिंदी न जाने के कारण मुझे कई अमृत से वंचित रहना पड़ता है।
But sometimes not speaking Hindi protects me from much disturbance.
कभी-कभी हिंदी न जानना इससे बहुत सारी अड़चनें दूर हो जाती।
Especially when people introduce me.
विशेषतः जब लोग मेरा परिचय देते हैं।
I don't know if Mahaprabhu is insulting me or praising me.
मुझे ये तो मालूम नहीं है कि महाप्रभु जी मेरी निंदा कर रहे हैं या प्रशंसा कर रहे हैं।
In the Bhagavad Gita, Krishna says we should not be attached to praise or blame, honor or dishonor.
भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि प्रशंसा निंदा मान अपमान इसमें किसी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
So by Sri Radharani's grace, I do not even know the difference.
राधारानी की कृपा से मुझे अंतर भी नहीं पता है।
But when the kirtan was going on, did anyone even notice that these disturbances were there?
जब कीर्तन चल रहा था तो क्या किसी ने देखा भी कि अड़चन आ रही है?
We completely forget the material world.
हम भौतिक जगत को पूर्णतः भूल जाते हैं।
Jagyai sankirtana prayar yajanti hi shamedusha. In this age of Kali Yuga, the recommended sacrifice is sankirtan, congregational chanting of the holy name.
इस कलि युग में जो यज्ञ बताया गया है वो है संकीर्तन, एक साथ कीर्तन करना।
Because when devotees come together to congregationally chant together in a unified spirit of love and devotion to glorify the name of God, we completely forget all the distractions and disturbances of this age of Kali Yuga.
क्योंकि जब भक्त एकत्र होकर कीर्तन करने लगते हैं तो हम इस कलयुग के सारे अड़चनों को जो है पूरी तरह से भूल जाते हैं।
But as soon as the kirtan stops, everything else begins.
लेकिन जैसे ही कीर्तन अंत होता है बाकी दूसरी चीजें शुरू हो जाती हैं।
So the great acharyas who are coming in the great line of Sri Gauranga Mahaprabhu, they are teaching this simple process.
तो श्री चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में जो महान आचार्य आ रहे हैं वो यही सरल तरीका हमें सिखाते हैं।
Our beloved Gurudev, Om Vishnupad Paramhansa, Sri Sriman Bhaktivedanta Swami Prabhupad, he writes in one of his purports that the purpose of the preaching of Krishna consciousness is not to defeat people by argument.
हमारे गुरु महाराज ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद बताते हैं कि प्रचार का उद्देश्य ये नहीं है कि वाद विवाद के द्वारा किसी को परास्त करना.
The duty of all preachers of Lord Gauranga Mahaprabhu's sampradaya only have one object.
Gauranga Mahaprabhu ke sampradaya ke sab pracharakon ka ek hi uddeshya hai.
And that is to induce people to sincerely chant the holy names of Krishna.
Aur ye hai ki logon ko bhagwan ke naam ko pavitrata se pukarna sikhana.
Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
The last sloka of the Bhagavatam, the conclusion of all of Vedavyas Maharaj's, Vedavyas great literatures, is that in the age of Kali Yuga, it is only Sankirtan, the congregational chanting of the holy name, that can purify one of all sins.
Vedavyas द्वारा रचित सब शास्त्रों के अंत में जो उनका निष्कर्ष है वो यही है कि इस कलयुग में सिर्फ हरिनाम कीर्तन ही है जो सब दोषों से मुक्त कर सकता है.
But the great acharyas, their great contribution to this world, it is not only to broadcast the glories and the necessity of chanting God's name, but how to properly chant God's name.
लेकिन महान आचार्य ने न सिर्फ ये सिखलाया है कि कैसे कि भगवान का नाम लेना चाहिए, बल्कि ये भी सिखाया है कि कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए.
Gauranga Mahaprabhu has taught Trinarapi sunichena taror api sahishnana amanina manadena kirtaniya sadahari.
Shri Chaitanya Mahaprabhu ne
sikha that one must be more humble than a blade of grass, more tolerant than a tree. One should be ready to offer all respects to others, but one should expect no respect for oneself.
Gauranga Mahaprabhu,
only in this consciousness can one chant the holy name constantly.
Chaitanya Mahaprabhu ne jo shlok bataya hai usme batate hain ki apne aap ko trin se bhi zyada neech manna hai, ped se zyada sahanshil banna hai aur sabko purna aadar dete hue swayam bilkul maan ki ichcha nahi rakhna hai. Isi chetna mein hum hamesha hari ka naam kirtan kar sakte hain.
But people do not understand what it really means to be humble.
Lekin log ye samajhte nahi hain ki namra banne ka sahi arth kya hai.
In the Bhagavad Gita, when Arjuna wanted to be very meek and go to the forest and neglect his duty, he thought he was being humble. But Krishna told him that this is a form of false pride. Your humility is to submissively obey me and fight this war.
जब भगवत गीता में अर्जुन जंगल में जाना चाहते थे तो वो ये सोच रहे थे कि मैं नम्र बन रहा हूँ, लेकिन भगवान ने बताया कि ये तो मिथ्या अभिमान है, सही नम्रता यह है कि मेरी आज्ञा पालन करके आप लड़ाई करें.
So today is a very, very auspicious day.
आज एक बहुत ही शुभ दिन है.
It is the appearance day of our param guru, Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya Shri Shriman Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupad.
वो हमारे परम गुरु ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिवस है.
And how wonderfully and beautifully he exhibited through his life and teachings the spirit of great humility.
और अपने जीवन से और अपनी शिक्षा से कैसे उन्होंने सिखाया कि कैसे नम्र बनना चाहिए.
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was born in the holy place of pilgrimage of Purushottam Kshetra, Sri Jagannath Puri Dham.
Inka janma jo hai pavitra sthan Jagannath Puri Purushottam Dham mein hua tha.
He was born of the illustrious acharya Srila Bhakti Vinod Thakur.
Ve ek mahan acharya Srila Bhakti Vinod Thakur ke suputra the.
He was the fourth of 10 children of Shri Bhakti Vinod Thakur.
Bhakti Vinod Thakur ke 10 santanon mein se ve chauthe the.
And it is described that Bhakti Vinod Thakur in the mood of Sri Advaita Acharya, he prayed fervently in compassion to the fallen souls of this age that Lord Sri Krishna would send one of his own personal associates to preach the glories of the holy name and the true message of Sri Chaitanya.
ऐसे बताया जाता है कि श्री अद्वैताचार्य के भाव को अनुकरण करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना की कि वो अपने निजी सहचर को भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए धरती पर भेजें।
When the child was born, only 6 months after the Rath Yatra of Sri Jagannath Dev was coming down the main street from the Jagannath Mandir to Gundicha Mandir. And on the way was Thakur Bhakti Vinod's home. The cart stopped and it remained for 3 days. Jagannath would not allow the cart to be moved. And during that time, Bhagavati Devi, the wife of Thakur Bhakti Vinod, took her little child, whose name was Bimala Prasad, and offered him to the lotus feet of Jagannath.
जब जगन्नाथ यात्रा हो रही थी उस समय जगन्नाथ पुरी से गुंडीचा मंदिर की तरफ तब जो है रथ जो है बिल्कुल उनके घर के सामने रुक गया और 3 दिन तक वहीं रुका रहा और उसके पश्चात जो उनकी माता थी भगवती देवी उन्होंने छोटे बालक को या जगन्नाथ के करीब ले आए.
At that time, the little baby reached out its tiny arms and touched the feet of Jagannath to place the dust on his head.
उस समय छोटे बालक ने अपने हाथ फैलाकर जगन्नाथ के चरणों का स्पर्श किया जिससे कि उनकी धूल मिल सके.
And just when that happened, the most beautiful of all the garlands decorating Jagannath's body fell off and fell around the child.
और जैसे ही वो हुआ कि सबसे सुंदर जो माला थी जगन्नाथ के शरीर पर वो गिर गई और बालक पर पड़ गई.
When Srila Bhaktivinoda Thakur heard of this news, he could understand that Lord Sri Krishna has fulfilled his prayer.
जब भक्तिविनोद ठाकुर ने समाचार सुना तब वो समझ गए कि भगवान ने उनकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं.
This morning in class we discussed in summary the life of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati.
आज सवेरे के प्रवचन में सारांश में हमने उनका जीवन चरित्र प्रवचन दिया था.
This evening I would like to speak briefly on some of the very well-known teachings coming from the phrases of Srila Bhakti Siddhanta.
और आज शाम जो है हम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की कुछ शिक्षाएं जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे.
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर used to tell his disciples that we are not meant to enjoy Krishna, we are meant to be enjoyed by Krishna.
वो अपने शिष्यों से बताते थे कि हमें कृष्ण का भोग नहीं करना है बल्कि कृष्ण हमें भोग करना चाहिए.
यस्य प्रसादत भगवत प्रसादो यस्य प्रसाद नाकथकुत मद्भुक मद्भक्ता पूजा व्यधिका.
And the topmost way of pleasing Krishna, of giving Krishna enjoyment, is to satisfy his devotees through service.
और कृष्ण को आनंद देने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि भक्तों को प्रसन्न करना सेवा भावना के द्वारा.
He used to say, "Do not try to see God, but try to serve God in such a way that he will come to see you."
वो कहा करते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करिए लेकिन भगवान की सेवा इस तरह से करिए कि भगवान आपको देखने के लिए आए.
Our tendency in spiritual life is we want to enjoy the fruits of our own spiritual advancement.
ये हमारे अंदर प्रवृत्ति है आध्यात्मिक जीवन में भी कि हम अपने जो साधना है उसका फल भोगना चाहते हैं.
Krishna explains in Bhagavad Gita, Param Dristva Nivartate, that one can give up the worldly pleasures by experiencing the higher taste of love of God.
कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि व्यक्ति ये संसार के भोगों को त्याग कर सकता है जबकि वो भगवान के प्रेम के फल को आस्वादन करे.
But Srila Bhakti Siddhanta Saraswati explained that as long as we are after the higher taste, we will never experience it.
लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब तक हम उस उच्च स्वाद के पीछे हैं तब तक हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे.
The higher taste is the willingness to sacrifice for the pleasure of Krishna.
ये जो उच्च रुचि जो है वो ये है कि कृष्ण के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहना.
When Krishna had headache, the gopis were willing to suffer in hell eternally if it would give pleasure to Krishna by giving the dust from their feet to his head.
जब कृष्ण को सरदर्द था तो गोपियां जो है उनके सरदर्द को दूर करने के लिए हमेशा के लिए नरक में जाने के लिए भी तैयार थी अपनी धूल देकर.
Sometimes we are attached to the ecstasy of Krishna consciousness.
कभी
But Rupa Goswami explains that this is an impediment to our service and a devotee's desire is simply service.
कभी कभी जो है हम कृष्ण भावना के जो भाव को भोग करने में आनंद लेते हैं लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये जो है सेवा में एक बाधा है बल्कि हमें सिर्फ सेवा की कामना करनी चाहिए.
In Bhakti Rasamrita Sindhu, there is a story Rupa Goswami tells. One of the servants of Brajadham of Sri Krishna, he was fanning Krishna with a peacock fan.
भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि भगवान के जो एक साथी हैं एक बार उनको मोर पंख से जो है हवा दे रहे थे.
And upon seeing the beauty of Sri Krishna, his body and his mind were feeling such ecstasy that tears were flowing from his eyes.
और भगवान की सुंदरता को देखकर उन्हें इतने भाव विहल हो रहे थे कि उनके आंखों से अश्रु धारा बह रही थी.
But because of those tears, he could not properly see Krishna to fan him nicely.
और वो उन अश्रु के कारण जो भगवान को ठीक से नहीं दे पाए जिससे कि वो अच्छी तरह से उनको पंखा कर सके.
So he began to curse his ecstatic symptoms because they were interfering with how he could please Krishna.
तो वो अपने जो भाव के जो लक्षण थे उनको जो है धिक्कारने लगे क्योंकि वो सेवा में बाधा बन रहे थे.
And Thakur Bhakti Vinod used to pray that the inconveniences, the sufferings and the problems that I have to face in my life in the service of Krishna, that is my greatest pleasure.
Bhakti Vinod Thakur kehte the bhagwan ki seva mein jo bhi asuvidhaen ya jo dukh bhogne pade wahi mere jo hai sabse bada anand hai.
Because my pleasure is simply in serving the Lord.
Kyunki mera anand to isi mein hai ki bhagwan ki seva karna hai.
I remember one time Srila Prabhupada, when he was first building his temple in Ramanreti in Vrindavan, one of the sannyasis was helping to oversee the construction and he was constantly worrying about being cheated.
Mujhe smaran aa raha hai ki Krishna Balaram mandir jab ban raha tha tab Prabhupada ji ke ek sannyasi jo hain वो कंस्ट्रक्शन के कार्य में थे और वो हमेशा धोखा खा रहे थे.
So he was in terrible anxiety.
वो हमेशा चिंता में रहते थे.
And he used to see all the nice babajis just walking around chanting Jai Shri Radhe.
और वो पास में देखते थे बहुत सारे बाबा जी घूमते घूमते जय श्री राधे कहते थे.
So he was thinking, I have taken to the renounced order of life to argue with all these business people about construction costs.
तो वो सोचते
He approached Gurudev and said, I want to just chant Jai Shri Radhe.
So sochne lage ki maine sanyas isliye liya hai kyunki main sirf iske jo hai uske liye vaad vivad karta rahu. Wo bole Guru Maharaj se main to sirf Jai Shri Radhe gana chahta hu.
And Prabhupada said that your chanting of Jai Shri Radhe will have no meaning to Radharani unless you chant in a mood of surrender.
वो बोले कि तुम्हारा जो जय श्री राधे कहना है वो राधा रानी के लिए कोई अर्थ ही नहीं होगा जब तक कि तुम्हारे अंदर समर्पण की भावना ना हो.
And your surrender is to build this temple.
और तुम्हारे लिए समर्पण ये है कि इस मंदिर का निर्माण करना.
He told him, do not try to enjoy Vrindavan, but try to serve Vrindavan in such a way that Vrindavan will enjoy you.
बोले वृंदावन का भोग करने का प्रयास नहीं करिए लेकिन वृंदावन की ऐसी सेवा करिए कि वृंदावन तुम्हारा भोग करे.
Those who go to take they become a burden. But those who come to give, they become like a crown jewel to the Lord and His Dham.
जो कि जो लोग लेने जाते हैं वो तो एक बोझा बन जाते हैं, लेकिन जो देने जाते हैं वो भगवान के धाम में एक मणि के समान बन जाते हैं.
So this was the spirit of Bhakti Siddhanta. Do not try to see God, but act in such a way that God sees you.
ये भक्ति सिद्धांत की भावना थी कि भगवान को देखने का प्रयास नहीं करें, लेकिन ऐसा कार्य करें कि भगवान तुम्हें देखना चाहें.
And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, although he was a guru and he had tens and thousands of disciples, he was so powerful in his preaching, so powerful in his personal conviction and his purity, that people from all walks of life found shelter in his lotus feet and worshipped him with great love.
Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur itne mahan pracharak the ki unke hazaron shishya the और इतने ज़्यादा उनके जो है लोग उनके जो है उनकी सेवा भावना में मग्न रहते थे.
But when they would bow down and offer pranams to him with a very, very humble heart and folded palms, he would always say to each devotee, Dasosmi, I am your servant.
और जब वो उनके प्रति आदर से प्रणाम करते तो वो हर एक भक्त से कहते, दासोस्मि, मैं आपका दास हूँ.
He used to one year during his Vyas Puja, thousands of people were gathered to chant his name, to chant his glories, to offer him garlands and flowers and gifts. He was sitting on a beautiful elevated seat. And when it came time for him to speak, he explained that, do you know what it feels like for a wretched, sinful, useless dog to be on this seat?
तो उनके व्यास पूजा के अवसर पर जब हजारों लोग उनको भेंट करने के लिए, उनके गुणगान करने के लिए आए थे, तब वो जब बैठे हुए थे तब वो बोले कि तुमको मालूम है कि मुझे कैसा लग रहा है, जैसे कि मेरे जैसे एक पापी बेकार जो है कुत्ता इस आसन पर बैठा है.
You are all my prabhus, you are all my masters.
आप सब मेरे प्रभु हो, मेरे स्वामी हो.
Why? Because Bhagavan Sri Krishna, Sri Radharani, and my Gurudev, they have sent all of you. You are my Guru's personal representatives who have come to engage me in his service.
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और गुरुदेव आप उनके प्रतिनिधि हैं और उन्होंने मुझे भेजा है कि जिससे मुझे कृष्ण की सेवा में लगा सके.
And my service is to train you and to teach you how to love God.
और मेरी सेवा यह है कि आपको शिक्षा देना और समझाना कि कैसे भगवान से प्रेम किया जाए.
He used to say that one who takes position of guru and thinks he is guru, you, the first you, he said, is taken away, and you become garu, which means a cow.
तो बोले कि जो व्यक्ति गुरु बनता है और अपने आप को गुरु मानता है, उसका एक जो आखिरी यू है वो बीच वाला पहला वाला यू जो है निकाल देते हैं और वो गु यानी कि गाय बन जाता है.
A guru never feels himself master. A real guru feels himself the lowest, most menial servant of all of his disciples and of all the world.
सच्चा गुरु है वो कभी अपने को स्वामी नहीं मानता, बल्कि वो अपने शिष्यों का और सारी दुनिया का एक नम्र सेवक मानता है.
Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to say that all of my disciples and all those people that come to me, I see that they are personally being sent by Krishna, therefore they are the representatives of my master.
तो भक्ति सिद्धांत कहते थे कि मेरे सारे शिष्य और जो भी लोग मेरे से मिलने आते हैं वो कृष्ण द्वारा भेजे गए हैं, इसलिए वो मेरे स्वामी हैं.
दासोस्मि, आई एम योर सर्वेंट.
और मैं दास हूँ उनका.
He also taught how disciples should approach the spiritual master.
उन्होंने ये भी सिखाया कि कैसे शिष्य को जो है गुरु को पास पहुंचना चाहिए.
The spiritual master is not concerned with any material benefits. He used to tell his disciples that we should not flatter people simply to get some monetary gain. We should have faith that if we speak the plain, simple truth, Krishna will provide everything. Our goal is simply to please Krishna.
वो अपने शिष्यों से बताया करते थे कि हमें किसी की प्रशंसा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमें कोई धन या कोई चीज़ प्राप्त होगी. हमें सिर्फ कृष्ण की सेवा करनी है और सच्चा सत्य बोलना है और श्री कृष्ण ही सब कुछ दे देंगे.
One time in a lecture, Srila Prabhupada, who was then Abhay Charanaravinda, was sitting, hearing a lecture from his Gurudev.
एक बार प्रवचन में उनके जो शिष्य अभय चरण डे जो स्वामी प्रभुपाद हैं वो सुन रहे थे उनका प्रवचन.
At that time a very established and wealthy disciple started whispering something in our Guru Maharaj's ear.
और उस समय एक बहुत ही जो धनी कोई शिष्य था वो हमारे गुरु महाराज के कानों में कुछ कहने लगे.
Bhakti Siddhanta was speaking at the time and he looked at them and he became very angry.
Bhakti Siddhanta us samay bol rahe the wo unki taraf dekh kar bade krodhit hue.
And he looked at this rich man and he said, do you think your 150 rupee donation can purchase your guru?
Bole ki aap kya samajhte hain ki aapke 150 rupaye ka jo daan hai wo kya guru ko khareed sakta hai?
And then he looked at my Gurudev Prabhupada and he said, if you do not want to hear me, then you please come up on this lecture stand and you give the talk.
प्रभुपाद से बोले कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए और आप प्रवचन दीजिए.
And Guru Maharaj explained he was mortified, he was paralyzed to hear his guru chastise him like this.
तो प्रभुपाद जी बताए कि वो बिल्कुल जो है मृत्यु से हो गए, पैरालाइज्ड हो गए ये गुरु के जो है दंडकरणीय वचन सुनकर.
And then he realized how every word is so precious that we should open our ears, open our hearts to drink every drop.
और उन्होंने ये समझा कि गुरु महाराज का हर एक शब्द जो है इतना ज़्यादा मूल्यवान है कि हमें अपने हृदय को खोलना चाहिए कि हर बूंद को ग्रहण करने के लिए.
Sometimes when the disciples would preach, one time they organized big program and invited so many people and no one came.
Ek bar shishyon ne bada karyakram jo hai intezam kiya aur bade bade logon ko bulaya lekin koi nahi aaya.
So they had kirtan amongst themselves.
Unhone bas aapas mein kirtan kiya.
And they gave some talk amongst themselves.
Aur aapas mein hi thodi der ke liye pravachan diya.
But they were very much distressed.
Lekin wo bahut dukhi the.
So when they came back and reported their activities to Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he was very happy.
और जब उन्होंने समाचार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दिया तो वो बड़े खुश हुए.
He said, you should not be attached to how many people come to hear you.
बोले तुम्हें ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि कितने लोग तुम्हें सुनने के लिए आ रहे हैं.
He said, if nobody comes, you preach to the four walls.
अगर कोई नहीं आए तो दीवारों को ही प्रवचन दे.
We are preaching simply for the pleasure of Krishna.
हम सिर्फ कृष्ण को आनंद देने के लिए ही प्रचार कर रहे हैं.
We are not attached to the fruits. We are not attached to the results. We are only attached to the service.
हमें फल से नहीं आ सकती है. हमें सिर्फ जो सेवा से ही आ सकती है.
Bhakti Siddhanta used to say, better one moon than millions of stars.
वो कहते थे कि एक चंद्रमा जो है वो हजारों सितारों से भी अच्छा है.
Better to preach to one person who sincerely wants to surrender than millions of people who simply want to enjoy hearing.
ज़्यादा अच्छा है कि एक जो है कोई सच्चा शिष्य उसको प्रचार करना कि बजाय इसके कि हजारों लोगों को सुनाना जो सिर्फ सुनने का आनंद लेना चाहते हैं.
श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती used to call this world the world of the cheaters and the cheated.
वो कहते थे कि ये दुनिया जो है धोखेबाजों और जो धोखा खाना चाहते हैं उनकी दुनिया है.
He He used to use the example very frequently of how sometimes young ladies go to holy places thinking that if a sadhu impregnates me, then it will be very auspicious offspring. So they go there especially to make the sadhus fall down from their vows.
तो उस तरह से बताते थे कि कई बार ऐसे जो स्त्री है पवित्र स्थान में इसलिए जाते हैं कि अगर साधु के द्वारा मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो बहुत अच्छा होगा.
In the mood of serving the sadhu so sweetly, that is their motive.
और वो मीठे बातों से मीठे भावना से साधु की सेवा करते हैं लेकिन उनका उद्देश्य ये होता है.
So their service is simply cheating.
तो उनकी सेवा जो है वो सिर्फ धोखा ही है.
But then he explained that the lowest grade dacoits, they know that young ladies come and do this, so they disguise themselves as sadhus.
तो वो ये जानते हैं कि ऐसे ऐसे नीच जाकू भी जो हैं जो जानते हैं कि स्त्री इस तरह से आती हैं तो वो साधु के वेश में रहते हैं वहाँ पर.
And they, they accept the service from these beautiful young girls and enjoy them.
तो ये जो साधु हैं उनकी उनसे सेवा स्वीकार करके उनका भोग करते हैं.
And give them the dacoit seed.
तो और इस तरह से जो है उनमें उनके जो है डाकू की बीज देते हैं.
He said this is an example of how this is the world of the cheaters and the cheated.
तो ये एक उदाहरण है जिससे हम जान सकते हैं कैसे दुनिया जो है धोखेबाज और जो धोखा खाना चाहते हैं उनकी है.
And we find in this world there's really no love and trust for anyone who is attached to sense enjoyment.
हम इस दुनिया में देखते हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति से आसक्त हैं उनमें कोई भी प्रेम या विश्वास का सवाल ही नहीं उठता.
At the slightest provocation friends become enemies.
थोड़ी सी बात पर ही जो है मित्र दुश्मन बन जाते हैं.
When we are too attached to money and sense enjoyment, nothing is sacred anymore in our life.
जब हम पैसे और इंद्रिय तृप्ति से आसक्त रहते हैं तब हमारे जीवन में कुछ भी पवित्र नहीं रह पाता.
Even in spiritual circles, when money and sense gratification means gross and subtle. Gross means the pleasure of the senses, and subtle means prestige. When these elements come between any two people, even in religious institutions, there becomes conflict and people become enemies.
बता रहे हैं कि धार्मिक संस्थाओं में भी जब सूक्ष्म या स्थूल इंद्रिय तृप्ति यानी मान की इच्छा भी अगर आ जाए तो जो आपस में जो मित्र होते हैं वो शत्रु बन जाते हैं.
Love and trust can only take place when Krishna is in the center.
प्रेम और विश्वास तभी हो सकता है जब दोनों के बीच में केंद्र श्री कृष्ण हो.
If anything else is between us, we are potentially worst enemies.
और अगर हमारे बीच में कोई और चीज है तो हमारी संभावना है कि हम सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे.
Therefore we see in this world how sad that even a father and a son become bitter enemies. When the question of family prestige or money is at stake.
हम इस दुनिया में भी देखते हैं जब कि पैसे या यश की बात उठती है तो पिता और पुत्र भी दुश्मन बन जाते हैं.
Even brothers or sisters, they fight like cats and dogs. They become enemies when money, prestige, or sense gratification comes between them.
यहाँ तक कि भाई बहन भी जो है कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं और आपस में जो है दुश्मन बन जाते हैं जब पैसा या इंद्रिय तृप्ति जो है बीच में आने लगता है.
They're willing to even destroy each other.
यहाँ तक कि वो एक दूसरे को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं.
Even best of friends become worst of enemies.
जो सब परम मित्र हैं वो भी सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं.
Why? Because wherever there is too much attachment to wealth, to women, to prestige, we are in the world of the cheaters and the cheated, and no one is exempt.
और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जहाँ पर भी धन या स्त्री या यश इनमें आ सकती है तब हम जो धोखा देने वाले हैं और धोखा खाने वाले हैं उसकी दुनिया में हैं और कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है.
All the wars of this nation, they are not based on religious principles.
They are based on greed.
ये सारी लड़ाइयाँ हैं ये धार्मिक सिद्धांत पर नहीं हैं बल्कि लोभ पर आधारित हैं.
All the crime in this world is based on greed.
सारे जो भी हिंसा हो रही है वो भी लोभ पर ही आधारित है.
Everyone is anxious to cheat one another.
हर कोई एक दूसरे को धोखा देने के लिए उत्सुक है.
No one can trust one another.
कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकता.
Everyone is suspicious, even of their own loved ones.
जिसे वो ज्यादा प्रेम करते हैं उसके प्रति भी शंकाशील रहते हैं.
Therefore, to have these things is a curse.
तो ये प्राप्त होना ये तो एक जो है शाप ही है.
If we are attached to them for any other purpose than the pleasure of Krishna.
अगर हम इनसे आसक्ति रखते हैं चाहे और कोई कारण के सिवाय कृष्ण के लिए.
Whatever we have, if we are only attached to the service of Krishna, then we are liberated from this world of cheaters and cheated.
जो भी हमारे पास है अगर हम सिर्फ उसे कृष्ण की सेवा के लिए यूज करते हैं तो हम इस धोखेबाज और धोखा खाने वाले की दुनिया से मुक्त हैं.
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर used to say, "This world is no place for a gentleman."
वो कहते थे कि इस दुनिया में सज्जनों के लिए दुनिया नहीं है.
And one time a newspaper reporter asked Bhaktivedanta Swami Prabhupada, "What is the way we can understand who is your devotee?"
एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा गया एक रिपोर्टर द्वारा कि हम कैसे जान सकते हैं कि कौन आपका भक्त है.
So you can understand who is my devotee because he is a gentleman.
बोले इस तरह समझ सकते हैं कि वो एक सज्जन होंगे.
So if we put these two together, we can understand this world is no place for a devotee.
अगर इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जाए तो ये निष्कर्ष निकलता है कि ये दुनिया जो है भक्तों के लिए नहीं है.
Because it is the world of cheaters and cheated, and a devotee is concerned only with one thing, establishing love and trust.
क्योंकि ये धोखा खाने वाले और धोखा देने वाले की दुनिया है और भक्त में तो एक ही रुचि है कि दुनिया में जो है प्रेम की पैदा करना.
That love and trust is like the oil that lubricates the various components of the machine of material society.
इस भौतिक दुनिया को चलाने के लिए जो है तेल का काम करती है ये प्रेम और विश्वास.
Mobile engine, the machines are the components of the machine, the engine are constantly rubbing one another and creating friction.
जैसे कि जो कोई वाहन होता है उसके जो इंजन होते हैं आपस में जो भाग होते हैं एक दूसरे से रगड़ते रहते हैं.
And ultimately that friction destroys both parts.
और उस रगड़ने के कारण जो है दोनों भाग नष्ट हो जाते हैं.
But if there is oil, then they work together very smoothly, very sweetly to fulfill a very wonderful purpose.
लेकिन अगर तेल होता है तो बड़ी अच्छी तरह से बड़े मिठास से वो दोनों जो है वो कार्य को पूरा करते हैं.
Love and trust is that lubrication, that oil.
तो ये प्रेम और विश्वास जो है वही इस प्रकार का तेल है.
But where there is no love and trust, where Krishna is not the center, there is simply the cheaters and the cheated.
लेकिन जहाँ पर ऐसा प्रेम और विश्वास नहीं होता है वहाँ पर सिर्फ ये जो है कृष्ण जब केंद्र नहीं होते तो सिर्फ धोखेबाज देने वाले और धोखा खाने वाले इनकी चीजें होती हैं.
Therefore, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur would explain that this was his final instruction before he left this world.
इस दुनिया को छोड़ने से पहले उनकी आखिरी आज्ञा थी.
Follow in the footsteps of Sri Rupa and Raghunath and always aspire only for one thing, the service of the Supreme Lord and the service of his devotees.
बोले कि रूप और रघुनाथ के चरण कमलों का अनुसरण करते हुए सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा की ही कामना करें.
Most beautiful essay was how to be more humble than a blade of grass.
उनका बहुत ही सुंदर एक निबंध जो है वो ये था कि कैसे तृण से भी ज्यादा नम्र बनना.
This is was his most frequent teaching.
ये उनकी सबसे ज्यादा बताई हुई शिक्षा थी.
It is the most difficult thing in all of creation. But it is the only thing that will please Krishna.
ये पूरी सृष्टि में सबसे मुश्किल चीज है लेकिन यही एक चीज है जो श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं.
Srila Bhakti, Srila Sanatan Goswami was considered in Gauranga Mahaprabhu's Leela to be the personification of humility.
गौरंग लीला में श्री सनातन गोस्वामी को नम्रता की मूर्तिमान रूप माना जाता है।
Because he at one time in his life he was a servant of a sinful and materialistic person, he considered himself so wretched and sinful that he would not even enter the Jagannath temple, thinking he was too much contaminated.
क्योंकि एक समय वो किसी पापी व्यक्ति की सेवा में थे, वो अपने आप को इतना नीच मानते थे कि वो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश भी नहीं करते थे।
When he would present himself before Lord Chaitanya, the humility of his heart was so genuine and so honest that Mahaprabhu would cry and embrace him and say that your humility is breaking my heart. It is only such humility that can purchase Krishna and nothing else.
जब वो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के सामने नम्रता से पेश आते थे तो वो उनसे गले मिलकर रोने लगते थे और कहते थे कि तुम्हारी नम्रता जो है मेरे हृदय को तोड़ रही है और ऐसी नम्रता से ही जो है श्री कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं।
Sometimes devotees, they aspire for something other than the humble service of the Vaishnavas.
कई बार भक्त जो है वैष्णव की नम्र सेवा से अलग कोई चीज की कामना करते हैं।
They have missed the whole point.
वो जो है मूल तत्व को भूल ही गए हैं।
The whole purpose of practicing the path of bhakti is to please Krishna.
भक्ति को जो पालन करने का एक ही उद्देश्य है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करना।
And whatever we do without that spirit of humble service to the Lord's devotees, nothing really pleases Krishna. However wonderfully we do things in the eyes of God, in the eyes of man.
और दुनिया के लोगों की दृष्टि में चाहे हम कितनी बड़ी सेवा करें लेकिन भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा भावना ना हो तो सब बेकार है।
Therefore, he stressed this very much. At one time, Bhakti Siddhanta Saraswati, he made, I believe, 18 sannyasis. And at one time, his sannyasis were demanding very much service from the grihasthas and brahmacharis.
और उन्होंने एक बार 18 सन्यासियों को सन्यास दिया और एक बार ऐसे हुआ कि जो सन्यासी थे वो गृहस्थ और ब्रह्मचारी थे, बहुत ज्यादा सेवा कामना कर रहे थे।
And they would become very upset when they were not served nicely.
और जब उनकी ठीक से सेवा नहीं होते तो वो बहुत क्रोधित हो जाते थे।
I remember reading a letter that Bhakti Siddhanta Saraswati sent to all of his mutts. He's opened 64 mutts throughout India.
उन्होंने 64 मठ की स्थापना की भारत भर में और मुझे एक पत्र याद है जो कि उन्होंने सारे मठों में भेजा।
And he said that what is the purpose of a sannyasi? Sannyasi means one who is renounced.
बोले सन्यासी का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि जो सब जिसने सन्यास सब कुछ छोड़ दिया है।
And of all things to renounce, renouncing wife, renouncing children, renouncing money, renouncing comfortable place to stay, that is not very difficult.
बोले सब चीज छोड़ने में जो स्त्री को छोड़ना, पैसे को छोड़ना, स्थान को छोड़ना, ये तो बहुत मुश्किल नहीं है।
Real renunciation means to renounce the desire for prestige.
सच्चा जो संन्यास है वो ये है कि आदर की, यश की जो कामना है उसको त्याग करना।
Say that rather than purifying yourself through the humble service of Guru and Vaishnavas, you want to imitate such great paramahamsas as Rupa Goswami and Haridas Thakur.
बोले कि आप इतने महान वैष्णव रूप और सनातन का जो है अनुकरण करना चाहते हैं गुरु और वैष्णव की सेवा को त्याग करके।
This is cheap imitation.
ये तो बहुत ही सस्ता जो अनुकरण है।
You purify yourself by menial service.
आप जो है सेवा के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं।
You purify yourself by being servant of the servant and chant the holy name in that spirit.
आप सेवकों का सेवक बनके और इस भावना में जप करने से शुद्ध बन सकते हैं।
This will attract the mercy of Sri Radha and Krishna.
इसी से श्री राधा और कृष्ण की कृपा आकर्षित होगी।
Bhakti Siddhanta used to be very much against mundane scholarship where there was not humble devotion.
और भक्ति से रहित होकर जो भी किसी में अगर ज्यादा स्कॉलरशिप विद्वता हो तो उसके बहुत विरुद्ध थे वो।
We hear these examples. These were all coming from Bhakti Siddhanta Saraswati. He used to say that those scholars
who learned the Vedas,
who learned the shlokas, who learned the rituals, but they do not entertain the devotees through humble service, he said, they are licking a bottle of honey from the outside.
वो बोलते थे कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं और सब कुछ जानते हैं लेकिन भक्तों के नम्र सेवक नहीं बनते वो तो ऐसा है कि जैसे बोतल को बाहर से चाटते हैं.
It is only through humble submissive service to Guru and Vaishnavas that Krishna gives us entrance into the real sweetness of bhakti.
ये तो सिर्फ गुरु और वैष्णव की नम्र सेवा से ही जो है भगवान भक्ति में जो है हमें प्रवेश देते हैं.
And he used to see, he also coined this phrase that philosophy without religion is mental speculation, and religion without philosophy is either sentimentalism or fanaticism.
वो ये भी बताते थे कि जो है धर्म के religion बिना धर्म के जो है दर्शन शास्त्र है वो तो मानसिक धर्म है और अगर धर्म शास्त्र में जो है दर्शन नहीं हो तो वो सिर्फ भावुकता हो जाती है.
Philosophy without that humble service attitude of practicing, putting it in our life, it is like licking the outside of the bottle. It is just mental speculation.
तो दर्शन शास्त्र बिना सेवा भावना के वो तो ऐसे ही है कि जैसे बोतल को बाहर से चाटना वो सिर्फ मानसिक तर्क है.
But at the same time, engaging in activities of religion without philosophically understanding why becomes either sentimentalism or fanaticism. Sometimes Prabhupada would explain, and Bhaktisiddhanta was very much against people who sentimentally try to become very advanced without understanding the basic principles of philosophy. They like to cry and they like to behave like very advanced devotees, but all these tears and all of these so-called actions of devotion are on the sentimental platform.
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके भी विरुद्ध थे कि सब भावना और इस तरह से नेत्रों में जो अश्रु धारा करना ये बिना दर्शन शास्त्र के समझे ये सब भावुकता के ही लक्षण हैं.
And also such devotion creates sectarianism and fanaticism. We think my way is the only way.
और ये सबसे जो है रूढ़िवाद फैल जाता है कि ये मेरा तरीका है वही एकमात्र तरीका है.
My guru is the only guru. My sampradaya is the only sampradaya.
मेरे गुरु ही एकमात्र गुरु हैं या मेरा संप्रदाय ही एकमात्र संप्रदाय.
And rather than love growing in our heart, envy toward others grows in our heart.
बजाय इससे कि प्रेम हमारे जीवन में आए हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा होने लगती है.
Therefore, religion without philosophy is also not complete.
उसी तरह से जो धर्म बिना दर्शन के वो पूर्ण नहीं कहलाया जा सकता.
Therefore, Saraswati Thakur was the most exalted and powerful of all philosophers. But the conclusion of all of his philosophy was to chant the holy names of the Lord in the spirit of the humble servant of the servant of the servant.
हालांकि वो इतने ज्यादा पहुंचे हुए दार्शनिक शास्त्र सब जानते थे उनका निष्कर्ष यही था कि भगवान का नाम सेवक के सेवक के सेवक बनकर लिया जाए.
This world is full of problems.
ये दुनिया समस्याओं से पूर्ण है.
In fact, the first meeting of our Guru Maharaj with Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was in 1922.
पहली भेंट श्रील प्रभुपाद की जो है भक्तिसिद्धांत से 1922 में हुई.
At that time, there was no beautiful temples for the Gaudiya Math. There was only one center. It was at the address of 1 Ultadanga Junction Road in Calcutta.
उस समय ज्यादा गौड़िया मठ के कोई मंदिर नहीं थे सिर्फ एक ही पता था एक उल्टा डंगा रोड और कलकत्ता.
It was just a rented house.
वो एक किराए पे लिया हुआ मकान था.
Bhakti Siddhanta was living in Mayapur Dham, chanting the holy names, and some of his disciples convinced that why don't you preach to the masses? Your message is so important. So they rented him a small little house in Calcutta.
तो उनके शिष्यों ने जब वो मायापुर में रह रहे थे तो कहा कि क्यों ना आप इतने ज्यादा लोगों को प्रचार करें तो उन्होंने उनके लिए किराए पे मकान लिया कलकत्ता में.
Every evening he would give class on Chaitanya Charitamrita sitting on the roof on the terrace just as we are sitting tonight.
और हर शाम को वो जैसे आज हम छत पर बैठे हैं छत पर बैठकर प्रवचन देते थे चैतन्य चरितामृत पर.
this giving class on terrace is very much within our line.
ये जो है टेरेस पर क्लास देना ये हमारे संप्रदाय के अनुकूल है.
So it was on this terrace in the year 1922 that Abhay Charande, who later became A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, was convinced by his friend Narendra Mulak to come and visit this great sadhu.
और वो इसी तरह टेरेस पर जो है नरेंद्र मल्लिक जो कि अभय चरण दे के मित्र थे उन्होंने उनको समझाया कि जाकर आप उनसे मिलिए.
And when Abhay came, he was not inclined to seeing sadhus because he saw most sadhus are really not sadhus. They're trying to take rather than to give.
तो अभय चरण जो है वो मिलने के लिए इतने उत्सुक नहीं थे क्योंकि अधिकांश साधु जो है वो साधु नहीं होते, वो देने के बजाय लेना चाहते हैं.
They like to eat chapatis.
वो सिर्फ चपाती खाने में जो है इंटरेस्ट रखते हैं.
They're not so much interested in giving love of God.
वो भगवत प्रेम देने में ज्यादा रुचि नहीं रखते.
This was his experience.
ये ऐसा उनका अनुभव था.
He saw so many chewing on the tobacco and smoking the bidis and having girlfriends. He was thinking that what do we need sadhus for?
तो वो देखते थे तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, स्त्री संग कर रहे हैं, तो बोले ऐसे साधु की क्या आवश्यकता है.
But his friend said, no, no, this sadhu, this bhakti siddhanta saraswati, very, very great, you must come. So to satisfy his friend, he said, all right, I will come.
मित्र ने कहा लेकिन ये जो साधु हैं ये बहुत महान साधु हैं, तो अपने मित्र को संतुष्ट करने के लिए वो उनके साथ आ गए.
So they came upon the roof, the terrace, and he was sitting on his asana, and Abhay, with great respect, he prostrated dandavat to offer his respects.
और वो जब टेरेस पर आए तब बड़े आदर पूर्वक अभय चरण जी ने उनको जो है दंडवत प्रणाम किया.
And as he was still on the ground, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur planted the seed within his heart, which would later blossom into the fruit of a worldwide preaching movement.
और जब वो जमीन पर ही थे तभी ही भक्ति सिद्धांत ने उनके अंदर एक बीज का आरोपण किया जो कि बाद में एक विश्वव्यापी जो है आंदोलन के रूप में विकसित हुआ.
He had never seen this young man before in his life.
उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी उनसे भेंट नहीं की थी.
And before this young man could even get up from offering his pranams, he gave him a lifelong mission.
और इससे पहले कि वो उठे प्रणाम करने के बाद उन्हें जो है जीवन भर का एक मिशन उन्हें प्रदान किया.
He said, you are a very intelligent young man. He was only about in his early 20s. He said, you should take this message of Lord Chaitanya and in the English language deliver it throughout the world.
उनसे बोले कि आप एक नौजवान शिक्षित व्यक्ति हो, आप श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश लेकर अंग्रेजी भावना में उसका प्रचार करें.
Abhay was very shocked. Who is this man giving me a life mission? I don't even know who he is.
तो अभय चरण को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कौन व्यक्ति है जो मुझे जीवन भर का एक मिशन दे रहे हैं, मैं तो उनको ठीक से जानता भी नहीं हूँ.
At that time, Abhay was a follower of Gandhi.
So he was Gandhi's disciple.
So he said, "Guru, he said, please try to understand that this religion is a great luxury. The real need is independence from the British."
तो वो उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि सच्ची जो आवश्यकता है वो है कि ब्रिटिश से मुक्ति प्राप्त करना.
As long as we're just the slaves, the captive slaves of the British Empire, we have no dignity in our country. Who is going to listen to our message?
Well, jab tak hum gulam ki tarah hain tab hamare sandesh ko kaun sunega.
And Srila Bhakti Siddhanta's immortal words penetrated the heart of Prabhupada.
Aur Srila Bhakti Siddhanta ke jo amar shabd the wo unke hriday mein jo hai pravesh kar gaye.
He said that politics and everything else in this world is always changing.
Bole is duniya mein rajneeti aur sab kuch badalta rehta hai.
And as long as people are cheating one another through all these changes, there's no solution to the real problem.
और इस सब बदल से जब तक लोग एक दूसरे को धोखा देते रहेंगे तो समस्या का हल नहीं होने वाला.
There is only one problem in all of creation.
पूरी सृष्टि में सिर्फ एक ही समस्या है.
And that problem is a lack of Krishna consciousness.
वो है कृष्ण भावना की कमी.
The only problem in all the universe is forgetfulness of Krishna.
पूरे ब्रह्मांड में एक ही समस्या है कि कृष्ण को भूल जाना.
And all other problems are born from that and that alone.
और बाकी सब समस्या जो है इसी एक समस्या से आती हैं.
And the solution to this problem is to always remember Krishna.
और उसके हल भी यही है कि हमेशा श्री कृष्ण को याद करना.
And how to always remember Krishna in this age? To chant his holy name and to associate with his devotees.
और ये कैसे करना है? हमेशा उनका नाम कीर्तन करना और भक्तों का संग करना.
Therefore, in this humble spirit, more humble than the grass, more tolerant than the tree, ready to offer all respect to others and to expect none and for oneself, we should cultivate this consciousness as our goal of life and chant the holy name in that spirit.
और इस भावना में अपने आप को नम्र सेवक मानकर जो है इस भावना को हमारे में विकसित करना यही हमारे जीवन का उद्देश्य हमें बनाना चाहिए.
That and that alone is the sum and substance of the life and teachings of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur.
यही जो है उनके जीवन का और चरित्र का सार है.
And he would speak this very boldly.
और ये बड़ी बहादुरी से बोलते थे.
His heart was gentle, but his voice was sometimes very bold.
उनका हृदय तो हमेशा नम्र रहता था लेकिन उनकी आवाज जो है कभी बहुत ही बहादुर की तरह होती.
A humble servant will present it any way that it is required to get the message across to the one he is serving.
एक नम्र सेवक जो है वो उसी तरह से उसको पेश करेगा जो कि आवश्यक है जिसको वो दे रहा है उसके लिए.
But anger for one who has unfulfilled lust, that is a great impediment for spiritual life.
तो जिनकी कामना पूरी नहीं हुई है उनके लिए क्रोध जो है वो तो एक बाधा हो जाता है.
But when anger is utilized as a tool to penetrate your false ego with the message of Godhead, that is an act of humble service.
लेकिन वो क्रोध जो कि इसलिए उपयोग किया जाता है कि तुम्हारे मिथ्या अहंकार को नष्ट करने के लिए वो तो भगवान की सेवा है.
Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was often in that mood.
Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur aksar isi mood mein rehte the.
So please always remember that this is the one principle that Krishna is looking for in everything we do, the humble service attitude.
Aur kripya ye hamesha dhyan rakhein ki yahi ek cheez hai jo Krishna hamare dekhna chahte hain chahe har karya jo hum karte hain usme.
And if we chant the holy name in that service attitude, then all the disturbances of material life, all the competition that is trying to tear our mind away from Krishna, we will be above, we will be transcendental.
अगर हम इस भावना से जप करते हैं कीर्तन करते हैं तो सब जो दुनिया की जो चीजें हैं जैसे अड़चने हैं हम उन सब से ऊपर हो जाएंगे.
Thank you very much.
धन्यवाद. हरे कृष्ण.
We are thinking we are disturbing them.
और वो सोच रहे हैं कि हम उन पर अड़चन दे रहे हैं.
Because we are.
ये वास्तव में हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं.
We're disturbing them more than they're disturbing us.
जितना वो हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं उससे ज्यादा हम डिस्टर्ब कर रहे हैं.
Why? Because they're trying to enjoy. Therefore we are interfering with their enjoyment. So they're very much disturbed. Especially when the kirtan goes on.
वो भोग करना चाहते हैं और हम उनपे जो है उनको समझाना चाहते हैं इसलिए जब कीर्तन हो रहा था तभी ज्यादा अड़चन उनमें आती है.
But we see that whatever they're saying, whatever noise they're making, is only reconfirming our philosophy.
जितनी आवाज वो करते हैं वो हमारे दर्शन के लिए और ज्यादा जो है शक्ति प्रदान करती है.
And helping us to chant even louder.
जिससे हमें कीर्तन और भी जोर से कर सके.
Therefore we are not disturbed.
इसलिए हम तो कभी डिस्टर्ब नहीं हैं।
We are very grateful.
हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं।
The more impediments come in our way, the closer we come to Krishna if we are in the right consciousness.
अगर हम सही भावना में हो तो जितनी ज्यादा अड़चने हमारे अंदर आए उतना ज्यादा हम कृष्ण के करीब आते हैं।
हरिबो।
हरिबो।
Saraswati replied, Prabhupada, that the chanting of the holy name can solve all the problem. Now every problem, people are working, going to job, family problem, several things, and you just said it, political problem, economic problem, family problem, everything can be solved by just chanting holy name. Means the solution given is very quick and short, is difficult to digest.
महाप्रभु जी पूछ रहे हैं कि ये जो दुनिया में इतनी सारी समस्याएं हैं, आप बता रहे हैं कि उनकी जो हल है सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र का जप है, तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है और कैसे इसको पालन किया जाए।
Understand, really, unless we try it.
हम ये तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम इसको लागू करने के प्रयास नहीं करते।
We must understand first with faith.
पहले हमें
in the word of God, in the word of the Shastra, in the word of all the Acharyas, that Krishna is none different than his name.
हमें गुरु और आचार्य और शास्त्र के वचन पर श्रद्धा रखते हुए समझना चाहिए कि कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है।
नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रास विग्रह। There is no difference. Kali kale nama rupe Krishna avatar. In this age of Kali, Krishna has descended. He has advented within his name.
कलयुग में भगवान जो है उन्होंने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है।
We read how Krishna killed Keshi. How Krishna killed Putana, how Krishna devoured massive forest fires. All that power of Krishna is completely manifested within the sound of his name.
हम पढ़ते हैं कैसे कृष्ण ने पूतना का वध किया, केशी का वध किया और अग्नि का दाह किया, तो वो सारी शक्ति जो कृष्ण की है वो अपने नाम में प्रकट है।
The name of Krishna is all auspicious, all attractive and all pure.
भगवान का नाम जो है वो सबसे ज्यादा आकर्षक है, सबसे ज्यादा मंगलकारी है और सबसे ज्यादा शुद्ध है।
The name of Krishna can make the most inauspicious the most auspicious, the most impure the most pure. That is the power of the name.
भगवान के नाम की शक्ति ऐसी है कि सबसे ज्यादा अपवित्र चीज भी पवित्र हो जाती है और सबसे ज्यादा जो अशुद्ध चीज है वो भी शुद्ध हो जाती है।
How the holy name can save even the most sinful people. Dina hina yata chilo hari namu dharilo.
भगवान का नाम
जप। We cannot understand it unless we understand through the shastra and through the lips of the sadhus the nature of what is the name of Krishna.
भगवान का नाम का प्रभाव जो है हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम शास्त्र और साधु से नहीं समझें कि भगवान का नाम क्या है।
Therefore, by simply chanting the holy name sincerely, the shastra explains what was attained through 60,000 years of meditation and tapasya in the age of Satyayuga can be attained simply by chanting the name of the Lord once in a offenseless and pure state of mind.
शास्त्र में बताए जाते हैं कि जो फल 60,000 साल की तपस्या से सतयुग में प्राप्त होता था वो सिर्फ एक बार निरपराध भावना से भगवान का नाम जप करने से मिल सकता है।
Ajamil was relieved of a whole life of terrible debauchery because he chanted the name of Narayan one time without offense.
अजामिल को सारे पाप कर्मों से मुक्ति मिल गई थी क्योंकि उन्होंने एक बार बिना अपराध के भगवान का नाम जप किया था।
Srila Prabhupada used to tell us, if you simply have complete faith that the name of God is none different than God, you are liberated.
श्री प्रभुपाद कहा करते थे अगर आप में यही एक विश्वास है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है तो आप मुक्त हैं।
हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरंजिता। That in this age of Kali, it's the only way. So why do we speak all this philosophy? Why do the great acharyas write so many books? Simply to establish that firm faith in our hearts of the nature of the name and its power, to convince us to never let go of the shelter of the holy name.
तो महान आचार्यों ने इतनी पुस्तकें क्यों लिखी हैं? वो इसीलिए कि हमें ये भगवान के नाम में विश्वास पैदा हो जाए और हम उनका आश्रय कभी नहीं त्यागें।
But this time,
इनका प्रश्न ये है कि भक्तों के प्रति तो नम्र भावना होनी चाहिए लेकिन जो भौतिकवादी लोग हैं बाहर उनके प्रति हमें कैसे भावना प्रकट करनी चाहिए।
It is described in Bhagavatam how a devotee should view the four different categories of personalities in this world.
श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि चार प्रकार के लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए।
When one approaches the deity in the temple, or the name of God, one must surrender oneself in great submission.
जब हम भगवान के विग्रह या नाम के पास आते हैं तब हमें बिल्कुल समर्पण की भावना से पूर्ण रूप से समर्पण कर देना चाहिए.
When one approaches the guru or a superior Vaishnava, one should approach with humility and a desire to serve, to worship their feet by serving them and carrying out their instruction.
अगर कोई गुरु या जो सीनियर वैष्णव है उनके प्रति आते हैं तो हमें नम्रता से उनके अंदर जो है सेवा भावना प्रकट करनी चाहिए.
Those who are on an equal level, a devotee should befriend them and encourage and be encouraged. Give gifts, receive gifts, reveal one's mind, hear another's mind. In this way, very intimately, walk side by side in the path of bhakti.
और जो हमारे बराबर स्तर के हैं उनसे हमें जो है अपना मन बतलाना और उनके मन की बात सुनना, उन्हें भेंट देना और उनके भेंट स्वीकार करना, इस तरह एक दूसरे से साथ साथ भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए.
For those who are in a fallen and degraded position, but they are innocent and willing to hear, a devotee should very compassionately reach down to lift that person up.
और जो कि बहुत नीचे लेवल पर हैं लेकिन जो कि इनोसेंट हैं यानी जो कि सुनना चाहते हैं उन्हें जो है हमें नीचे जाकर जो है उनके उद्धार के लिए प्रयास करना चाहिए.
And those persons who are atheistic and antagonistic, a devotee should avoid that association altogether.
और जो कि बिल्कुल नास्तिक हैं और जो विरुद्ध हैं ऐसे लोगों का संग जो है त्याग कर देना चाहिए.
Sura means a devotee of God. Asura means one who is not a devotee of God.
Sura मतलब भगवान का भक्त और असुर यानी जो भगवान का भक्त नहीं है.
There are two types of asuras, the innocent and the demoniac.
और असुर भी दो प्रकार के हैं, एक तो जो है राक्षसी प्रवृत्ति के हैं और दूसरे जो हैं जिन्होंने अपराध नहीं किया है.
The innocent, they are fallen, they are sinful, they do not have faith, but they are willing to hear, they are willing to accept the shelter of the mercy of Guru and Krishna.
तो जो निरपराधी हैं वो हालांकि वो जो है पतित हैं लेकिन वो सुनने के लिए तैयार हैं और भगवान की कृपा लेने के लिए तैयार हैं.
But those who after hearing, they blaspheme, they condemn, such persons we should avoid.
लेकिन जो व्यक्ति सुनने के बाद निंदा करते हैं ऐसे लोगों को हमें दूर रहना चाहिए.
Because usually they are stronger in their maya than we are in our Krishna.
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो माया में ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली